शरीरं सुरूपं तथा वाकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे जातं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं षडङ्गादिवेदो मुखी शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवित्तेषु मत्तो
ब्रह्मचर्य के महाव्रत का आज 14वां दिन। प्रत्येक दिवस महातपस्या का दिन हो, प्रत्येक दिन व्रत में दृढ़ होने का दिन हो, प्रत्येक दिन सफलता का दिन हो। दिन में प्रवेश और रात में सोते समय सफल होने की खुशी, तपस्या में बैठे सफल होके ही उठेंगे, ये दृढ़ प्रतिज्ञा विद्रोह का मार्ग है, आत्मक्रांति का मार्ग है, विप्लव का मार्ग है, स्वयं से बगावत का मार्ग है, जीतना है उन दबे हुए संस्कारों को, उखाड़ कर फेंकना है वो संस्कार जिन्होंने जन्म जन्म तो पता नहीं, याद भी नहीं, परंतु इस जन्म में बड़ी पीड़ा, बड़ा दुख, बड़ा कष्ट दिया है। एक है दुख, एक है कष्ट, दोनों में भेद है क्या? दुख मन का है, कष्ट शरीर का है। काम विकार ने दोनों ही दिया है, कष्ट भी दिया है और दुख भी दिया है। जीसस क्राइस्ट एक गांव से गुजर रहे, प्यास लगी है, शिष्यों से कहा कि जाकर देखो गांव में कहीं पानी है क्या, और वो एक जगह रुक गए। वो वहां पास में ही एक, उन्हें दिखाई पड़ा पीछे कुआ है और वहाँ एक स्त्री पानी भर रही है। वो स्त्री से कहते हैं कि क्या तुम मुझे पानी पिलाओगी? वो कहती है नहीं, मैं शूद्र जाति की हूँ, कैसे पिलाऊँ? तुम अपवित्र हो जाओगे अगर मैं तुम्हें पानी पिलाऊँगी तो। वो कहता है तुम मुझे पानी पिलाओ, मैं तुम्हें वो पानी पिलाऊँगा कि तुमको उसके बाद कभी प्यास ही नहीं लगेगी। उसे समझ नहीं आता ये क्या कह रहा है। वो बार बार वही कहती रहती है कि मैं शूद्र जाति की हूँ, नीच कुल की हूँ, कैसे तुम्हें पानी पिलाऊं? पर वो उसके बारे में ऐसी बातें कहता है जो उसके अतिरिक्त और किसी को भी पता नहीं होती है। और अचानक जैसे प्रकाश उसके मन में कौंध जाता है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो कहता है कि तुम मुझे बस वो पानी पिला दो। उसके बदले मैं तुम्हें ये पानी पिला दूंगा, एक ऐसा पानी जो पीने के बाद फिर कभी प्यास न लगे। और यही तो पानी है, वो पानी पीने से की से भी क्या फायदा जिससे फिर प्यास लगे, वो भोजन करने से भी क्या फायदा जो खाने के बाद फिर भूख लगे, वो भोग भोगने से भी क्या फायदा वो भोग भोगने के बाद फिर से भोग की इच्छा तो बनी ही रहे। ब्रह्मचर्य महाभोग है, परमात्मा महाभोग है, महारस है, ऐसा रस, ऐसा भोग जो भोगने के बाद फिर और कोई इच्छा नहीं रह जाती। एक ऐसा पानी है, एक ऐसा सरोवर है जिसका जल पीने के बाद फिर प्यास सदा के लिए मिट जाती है। बाकी संसार के सारे भोग और इस संसार का सारा पानी प्यास मिटाता है, ऐसा पानी पीकर भी क्या फायदा जो प्यास बुझाता नहीं है, बढ़ाता है। ऐसा खाना खाकर भी क्या फायदा जो खाकर भूख से तिलमिला उठ रहे, खा रहे हैं परंतु भूख भी बढ़ रही है, भूख तो शांत होती ही नहीं है। श्रद्धा का मिटने का नाम निशान नहीं। ये साधना है आत्मा की प्यास सदा के लिए बुझाने की। अव्यक्त वाणी 16 दिसंबर 1985। सदा पवित्रता की शक्ति से स्वयं को पावन बनाए, औरों को भी पावन बनाने की प्रेरणा देने वाले होना। घर गृहस्थ में रहे पवित्र आत्मा बनना है। इस विशेषता को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष करना है। ऐसे बहादुर बने होना, ये बड़ा बहादुरी का काम है पवित्रता। इसलिए महावीर को क्या कहा गया है, वर्धमान को क्या कहा गया है, महावीर। महावीर अर्थात जिसने महाव्रत लिए है, ब्रह्मचर्य महाव्रत है, जो उसका पालन करता है उसे महावीर कहा जाता है। और जो गृहस्थ में रह के पालन करता है वो तो वास्तव में महावीर है। ऐसे बहादुर बने होना। पावन आत्माएं हैं, स्मृति से स्वयं भी परिपक्व और दुनिया को भी यह प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाते चलो कौन सी आत्माएं हो, कौन सी आत्मा हो, कौन सी आत्मा हो। असंभव को संभव कर दिखाने के निमित्त पवित्रता की शक्ति फैलाने वाली आत्मा हो, यह सदा स्मृति में रखो। हिंसक को अहिंसक बनाने वाले विज्ञान क्या करता है, आज सुबह की अव्यक्त वाणी, सर्दी गर्मी गर्म वायुमंडल को ही बदल देता है। तो क्या तुम शुभ संकल्प से, श्रेष्ठ संकल्प से, शुभ भाव से, नैनों की भाषा से ये नहीं कर सकते? सूक्ष्म में शक्ति अधिक है, स्थूल में कम। सूक्ष्म संकल्प में शक्ति, शुद्ध संकल्प में बहुत बड़ी ऊर्जा है, उसका अभी तुम्हें बहुत कम अनुभव है। सर्टिफिकेट मिला है आज, इसका अभ्यास तुम्हें कम है, अनुभव भी कम है। तुम्हें अभ्यास किसका है, वाणी का, बोलने का। वैसे तो कहा जाता है संपूर्ण ज्ञान होने के बाद व्यक्ति मौन हो जाता है, पर यह समझाने के लिए भी तो बोलना ही पड़ता है। उसने ये कहा कि सूक्ष्म में शक्ति अधिक है, वाणी का तुमको अनुभव है, संकल्प का कम है। ये समझाने के लिए भी उसको बोलना ही तो पड़ा। अगर वो ये सोचता मैं परम मौन हूं, रोज आके बैठता एक घंटा और हम भी सामने बैठते, तो शायद उसका परम मौन हम कैसे समझ पाते। इस संसार में इतने ज्ञानी पुरुष थे, सभी बोलते ही रहे जीवन भर, जबकि वो सभी जानते थे कि बोलने से कुछ नहीं होगा, पर यह समझाने के लिए शायद कोई एक हाथ समझ जाए। 100 में से 99 तो नहीं समझ पाएंगे, पर एक भी समझ जाए तो वो उस परम अवस्था को उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए बोलते रहे, समझाते रहे। तो बाबा कह रहे, पवित्रता क्या है? सबसे पहले तो शक्ति है, ऊर्जा है। कोई व्रत, उपासना, कोई साधना मात्र नहीं है। क्या है? ऊर्जा का आरोहण है, ऊर्जा का जागरण है। ऊर्जा जो सोई पड़ी है, उस ऊर्जा को जगाना है। कहीं से लाना नहीं है, कहीं से खरीदना नहीं है, कहीं से उधार नहीं लेना है। वो ऊर्जा वही है, चेतना में ही निहित है। उस अंतर्निहित ऊर्जा को वहां से जगाकर, उसकी दिशा मोड़कर ऊर्ध्वरेता बनाना, ब्रह्मचर्य की शक्ति से स्वयं को पावन बनाए औरों को भी पावन बनाने की प्रेरणा देने वाले हो। अगर एक पवित्र बन जाए तो उसे देखकर कईयों को पावन बनने की प्रेरणा मिल सकती है। एक का निष्कलंक जीवन देखकर कईयों को अपना जीवन ऐसा ही निरामिष पुनीत बनाने की अंतर प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। और इस भट्टी का तो लक्ष्य ही है इस अंतर प्रज्ञा को जगाना है, बोध को जगाना है, जागरण की अवस्था में जीना है। 24 घंटे सतत निरंतर, क्योंकि बेहोश होने के बाद देखा क्या हुआ, क्या हुआ? चोट लगी, दुख हुआ, कष्ट मिला, बेहोशी आई, ठोकर लगी, नीचे गिरे। गृहस्थ में रहते पवित्र आत्मा बनना, इस विशेषता को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष करो, ऐसे बहादुर बनो। पावन आत्माएं हैं, इस स्मृति से स्वयं भी परिपक्व बनो। परिपक्व अर्थात मैच्योर्ड, बचपन के खेल समाप्त। छोटा बच्चा होता है, उसे चोट लगती है, गिर पड़ता है जमीन पर, रोने लगता है, उसे कैसे मनाया जाता है, उसका रोना कैसे रोका जाता है? बड़े आते हैं और क्या करते हैं? क्या हुआ, गिरे ना, जमीन ने मारा, तो जमीन को मारते हैं। जब जमीन को मारते हैं तो उसे अच्छा लगता है। बाबा ने कहा ये बचकानी बातें हैं, ये बचपन के खेल है, अब तुम प्रौढ़ हो, युवा हो, अब भी वो सारे काम नहीं करो जो बचपन में किया करते थे, अब बड़े हो गए हो। बचपन की वो भूले, जवानी की वो भूले अब नहीं करते रहो। बहुत भूले कर ली, बहुत गुल खिला लिए। प्रगल्भता हिंदी में शब्द है, उस मैच्योरिटी को प्राप्त करो। तो आज 14वां दिन, पहले तो ये बताओ 13 दिन क्या क्या किया, कौन कौन सी साधनाएं की। कल 7 लोगों को याद किया, और याद करके क्या किया? 2 मार्ग है याद करने के, एक भक्ति का मार्ग, एक ज्ञान का मार्ग। भक्ति का मार्ग अर्थात इमोशंस का मार्ग, भक्ति का मार्ग अर्थात रोना, भावनाओं में बहना, वो भक्ति का मार्ग है, सुख मिलता है, थोड़ा होना भी चाहिए। गीत गाना, कविताएं लिखना, परंतु ये अल्पकाल का, वो प्रसंग खत्म होने के बाद, कुछ दिन के बाद वही वासनाएं लौट आएगी। वो शुद्ध भाव, जो शुद्ध वैराग्य जागा था आग की लपटों को देखते हुए, वो विलीन हो जाएगा, क्योंकि वो समय जनित था। शमशानी वैराग्य तो जागता ही है कुछ समय के लिए, परंतु वो भक्ति का ही मार्ग है। एक दूसरा भी मार्ग है, वो कौन सा? वो करने का जो उन्होंने किया था, वो करने का जो उनका जीवन था, वैसा बनना जैसे वो थे, जो त्याग जो तपस्या उनके जीवन में थी, वही त्याग वही तपस्या हमारे जीवन में भी आ जाए, वो मार्ग है। उसमें बाहर का कोई दिखावा, कोई आडंबर कुछ भी नहीं है, वो आंतरिक जागरण का मार्ग है। किस मार्ग पर चलना ये हमारे हाथ में है। जब भी द्वापर से इस संसार में महान चेतना इस संसार से चली जाती है तो दो प्रकार के लोग तैयार हो जाते हैं, एक भक्ति एक ज्ञान। महात्मा बुद्ध गए, दो मार्ग निर्मित हुए। किसी ने कहा कि हमसे ये नहीं होगा, जो बुद्ध ने किया ये हमसे नहीं हो सकता। हाँ, बोधिसत्व हम नहीं बन सकते, परंतु एक चीज हो सकती है, बुद्ध की प्रतिमा खड़ी कर उसकी पूजा जरूर हम कर सकते, शायद उसका आशीर्वाद हो जाए एक दिन, और उस आशीर्वाद से हमारा भी उद्धार हो जाए। ये आसान मार्ग है, ये हम करेंगे। एक सांप्रदाय ये खड़ा हुआ, दूसरों ने कहा ना, वो संन्यास का सांप्रदाय स्थापन हुआ, हम वही करेंगे जो उन्होंने किया, वैसे ही आचरण में आएंगे जैसे वो थे। निर्णय हमारे हाथ में है क्या करना है। और क्या किया 14 दिन 13 दिन? भोजन पर काम किया, क्योंकि आहार शुद्धि से चित्त शुद्ध होती है। वो सारे तत्व भोजन में जो ब्रह्मचर्य में हलचल उत्पन्न कर रहे, उथल पुथल उत्पन्न कर रहे, वो सारों को हटाना, ये बहुत बड़ी साधना है। जब तक ये देह शुद्ध नहीं हो जाता तब तक ब्रह्मचर्य बहुत कठिन प्रयास है। जैन धर्म में ढेर सारी चीजें लिखी हुई है इस बारे में। हम पढ़ रहे थे कि कितना गहराई से उन्होंने सोचा है। कहा है कि एक बायो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हर व्यक्ति के इर्द गिर्द, और ये जो बायो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये स्त्री का और पुरुष का अलग दिशाओं में बहता है, अपोजिट पोल्स है। जैसे ही ये साथ में आते हैं एक अद्भुत सा आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, एक्साइटमेंट उत्पन्न हो जाती है, और ये ब्रह्मचर्य को पालन करने में बहुत बड़ी बाधा है। जैन धर्म में नियम है, एक सन्यासी उस स्थान पर नहीं बैठता जहां एक स्त्री बैठी थी 48 मिनट्स आफ्टर शी वैकेट्स इट, और स्त्री उस स्थान पर नहीं बैठती है जहां एक पुरुष बैठता था 3 घंटे तक। ये क्यों ऐसे कड़े नियम ये लोगों ने बना रखे है? वो सारे भोग विलास की बातें जो अतीत में घटी है, काम क्रीड़ा है, देखा है पूर्व की गृहस्थाश्रम में की गई काम क्रीड़ा के स्मरण का त्याग करना, वो सारी भोग विलास के स्मरण का त्याग, क्योंकि वो स्मरण फिर से वही परिस्थिति निर्माण करेगा, उसको भी त्याग कर दो। स्त्री द्वारा पुरुष की और पुरुष द्वारा स्त्री के नेत्र मुख इत्यादि अंगों को स्थिर दृष्टि से नहीं देखना। जैन दर्शन की धारणा के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र द्वारा गठित है हर कर्मेंद्रिय। अकेले पुरुष द्वारा अकेली स्त्री को व अकेली स्त्री अकेले पुरुष को धर्म कथा भी नहीं सुनाए। पुरुषों को स्त्री संबंधी और स्त्रियों को पुरुष संबंधी कथा बातों का त्याग करना। जब अकेला पुरुष अकेली स्त्री से बात करता है तब दोनों परस्पर एक दूसरे के सामने देखते हैं और ऊपर बताए उसी प्रकार स्त्री व पुरुष में चुंबकीय क्षेत्र ध्रुव परस्पर विरुद्ध होने से, परस्पर सामने देखने से दोनों की आंखों से निकलती हुई चुंबकीय रेखाएं एक हो जाने से चुंबकीय क्षेत्र भी एक हो जाता है, परिणामतः यह आकर्षण बढ़ जाता है। विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट चक्र पूर्ण हो जाता है और दोनों के बीच तीव्र आकर्षण उत्पन्न होता है, परिणामतः संयमी पुरुष का पतन होता है। सारे निर्देश अलग अलग धर्मों में अलग अलग रीति से दिए गए। भोजन की कितनी सारी बातें इन्होंने दी है यहाँ पर। प्रणीत आहार, अति स्निग्ध, स्निग्ध अर्थात ऑयली, जितना उसमें ऑयल है उतनी उत्तेजना है, उतना वो भारी है पचाने के लिए। फैट डिलेस द एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड, जितना उसमें मसाला है, ये मसाला खुद इनडाइजेस्टिबल है एंड मेक्स अदर्स इनडाइजेस्टिबल। कॉन्डिमेंट्स, स्पाइसेस जितने हैं वो खुद पचते नहीं और जो उनके साथ है उनको पचने नहीं देते। जिसके आहार में अधिक मसाले हैं और अधिक तेल है उनके लिए ब्रह्मचर्य कठिन है। इसलिए हो सके तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन जीरो ऑयल, फर्स्ट ऑप्शन जीरो ऑयल, पूरा ही हटा दो। दूसरा ऑप्शन वंस अ डे, दिन में एक ही बार ऑयल, दिन में एक ही बार ऑयल, एक ही बार, जन जन का व्यसन है तेल का, तेल वैतरणी नदी से निकलने की इच्छा, बाहर निकलने की इच्छा होती नहीं, हर चीज में तैरता हुआ ऑयल जब तक नहीं दिखता है। ऑयल ऑब्लिक घी, दोनों चीजें, ऑब्लिक मक्खन, जिसमें से कुछ भी हमारा आहार नहीं है, कुछ भी, किसी की भी आवश्यकता नहीं है, वो मुहावरा है। वर्तमान समय जिस तरह का परिवेश है और जिस तरह का भोजन है और जो बीमारियां बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ाएगी। अचानक नहीं होता है एक दिन हार्ट अटैक आ जाना, अचानक नहीं होता है कि एंजियोग्राफी किया और पता चला सब कुछ ब्लॉक है, अचानक कुछ भी नहीं होता है। तैयारी तो लंबे समय से चालू थी। छोड़ दो ब्रह्मचर्य को और छोड़ दो आध्यात्मिक जीवन को, सीधा शरीर पर आ जाओ और शरीर की बीमारी पर आ जाओ, मेडिकल साइंसेस। रोज हम 50 लोग देखते हैं ओपीडी में, उसमें से 40 लोग वो रिपोर्ट लेके आते हैं जो एब्सोल्युटली एबनॉर्मल है, और ये सभी योगी लोग होते हैं। आज 3 प्रकार बताए बाबा ने, कौन कौन से? प्रयोग करने वाले, अनुभव करने वाले, और तीसरे वो आप मुरली से ढूंढना। कौन मुरली सुना कर आया? मंजू बहन क्या सुना के आए? कुछ नहीं होगा, उन्नति ही होगी ये करेंगे तो, नई ऊर्जा प्रकट होगी, जो बंद द्वार था वो खुलेगा। 13 दिन से साधनाएं चालू है, हर दिन अलग 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 ढेर सारी बातें बता रहे हैं। और क्या बताया था भोजन में? ग्रीन्स को बढ़ाना है, सलाद को बढ़ाना है, फ्रूट्स को बढ़ाना है, हाई वाइब्रेशनल फूड को बढ़ाना है, सात्विक आहार को बढ़ाना है, वो सारा आहार जो राजसिक है, जिसमें उत्तेजना है, नमक मिर्च और मसाले, उसको छोड़ते जाना है। नई ऊर्जा प्रकट होती जाएगी, शक्ति प्रकट होती जाएगी, जो हुआ नहीं वो होगा, शरीर शुद्ध होगा, शरीर शुद्धि से आत्म शुद्धि होगी। अनुत्तेजक आहार हो, ऐसा आहार हो वो लेने के बाद ये लगे ही ना कि खाया है, वो लेने के बाद वो लाइटनेस खाने के पहले जो थी खाने के बाद भी रहे। वो हर आहार जो खाने के बाद तुरंत प्यास लगती है रोग कारक है। प्यास क्यों लगती है? नमक डालते हो इसलिए प्यास लगती है। प्यास क्यों लगती है? मसाले डाल रहे हो इसलिए प्यास लगती है। प्यास क्यों लगती हो? ऑयल डालते हो इसलिए प्यास लगती है। ये तीनों ही हटा दो, प्यास खत्म, प्यास ही नहीं है। उसके बाद एक चीज बताई थी, अनाज क्या करना है इसका? कम कम करते जाना है, धीरे 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 कम। ये हमारा आहार नहीं है, पशुओं का और पक्षियों का आहार है। पक्षियों को उनका आहार खाने दो, ये उनके लिए बना है। पक्षी पशु पत्ते खाते हैं, पक्षी अनाज खाते हैं। मनुष्य अनाज डायरेक्ट नहीं खा सकता, उसे 5-6 चीजों की आवश्यकता है। पहला आग, दूसरा पानी, तीसरा तेल, चौथा नमक, पांचवा मसाले, छठवा शक्कर, उसके बाद दूध। और दूध को मसाले अनाज के साथ मिलाना और कुछ बनाना, ये महाघातक है। तो दूसरी बात हमने चर्चा की थी भोजन की। तीसरा ब्रह्मचर्य के फायदों की चर्चा की थी, 7, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक। उसके बाद ब्रह्मचर्य व्रत से लोगों ने क्या क्या प्राप्तियां की, और वो सारे इतिहास के पात्र, इतिहास के, शास्त्रों के, पाश्चात्य भूमि के, यज्ञ के, वो सारे महान ब्रह्मचारी। उसके बाद 8 प्रकार की कंट्रोल, 4 बातें देखी थी, कंट्रोल, कंजर्व, डाइवर्ट और सब्लिमेशन। पहला था कंट्रोल, उसमें वो 8 बातें। फिर था डाइवर्ट करना, ज्ञान योग धारणा सेवा में, वो उस दिन वो दिखा था। और क्या देखा था, सोना, हमारा जो बिस्तर हो वो आरामदायी ना हो, कैसा हो, सीधा हो, जितना हो सके सख्त हो तो अच्छा है। पेट की सारी बीमारियां खत्म, ब्रह्मचर्य सहज। स्नान के बारे में देखा था, ऑल्टरनेट बाथ, ठंडा गर्म, और एंड कहाँ से करना है, ठंडे से। और क्या देखा था, चाय कॉफी, क्या करना है इनका, चाय कॉफी थोड़ा थोड़ा, बेकरी आउट, बेकरी को क्या करना है, आउट। फिर उसके बाद में मैदे का क्या करना है, योगी का भोजन सूक्ष्म होता है, जितना स्थूलता में वो रहेगा उतनी बुद्धि भी स्थूल रहेगी, जितना सूक्ष्म की ओर जाएगा उसमें पावर आने लगेगी। सूक्ष्म में शक्ति अधिक है, और सबसे सूक्ष्मतम भोजन है प्राण, और जो इस भोजन पर जीता है उन्हें कहते हैं प्राणिक पीपल, जो इस भोजन पर रहता है उन्हें कहते हैं ब्रदारियंस। संगम पर ब्रदारियंस, सतयुग में फ्रूटेरियन। और क्या देखा हमने 13 दिनों में, वंस अ वीक फास्टिंग। और क्या देखा, 12 बजे तक, 16 घंटे हो सके तो फास्टिंग, सुबह 6 से 12 बजे तक निर्जला, जो कर सके, जो नहीं कर सकते वो रसाहार। और क्या, प्रेजेंट में जीना। और क्या, मौन, मौन साइलेंस। और क्या देखा, शरीर को स्थिर करना, स्कैन करते रहना। और क्या देखा, डिजिटल हॉलिडे, कम से कम 2-3 घंटा दिन में मोबाइल मुक्त जीवन, 2-3 घंटा एक दिन में। फिर अपने संपूर्ण शरीर को प्यूरिटी की किरणें देना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। फिर कुछ प्रयोग देखे थे, कहाँ, हल्का बन जाना, अष्ट सिद्धियां देखी उस दिन ना, नीचे ऊपर, हल्का भारी जो चाहिए वो, उन शक्तियों को कैसे आह्वान करेंगे, चित्रों के माध्यम से, चित्र देखना और चित्र को सामने लाना, शक्ति मुझ में है। और गायब हो जाना, जैसे मैं इस कमरे में अब हूँ ही नहीं, और मेरे बगैर सब कुछ ठीक ठाक चालू है, अच्छा चालू है, मेरी उपस्थिति बाधा थी हटा दिया। और करंट देना, जो स्थान पर जाओ उस स्थान को पावन करना। और यहां देखना, इसके नीचे देखने की आवश्यकता नहीं। और साक्षी की साधना, और हर चीज को भोक्ता भाव से नहीं लेना है, साक्षी भाव से लेना है। भोक्ता भाव से लेंगे तो दुखी होंगे, चाहे वो कुछ भी हो। और परम धाम में लंबा लंबा समय रहने का अभ्यास, एक दिन हमने अभ्यास किया था, क्या अभ्यास किया था, एक दिन एक घंटे तक अवधि को बढ़ाना है परम धाम में रहने की, और अलग अलग नाम से अनुभव, और ग्रीन टाइम को बढ़ाना है। क्या करना है अपने? ग्रीन टाइम को बढ़ाना है, प्रकृति के सानिध्य में रहने का अभ्यास। जितना अधिक प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे उतनी शक्ति बढ़ेगी। और एकांत, सनगेजिंग, सूरज को देखते रहना, पानी को चार्ज करना है। कैसे चार्ज करेंगे? कांच के जार में रख देंगे, सूरज में दिन भर रख दो और उसी पानी को पियो। और जो भी पियोगे और जो भी खाओगे उसके पहले क्या करना है? तीन चीजें, आंखों से, मस्तक से और हाथों से उन्हें किरणें देनी है प्यूरिटी की, और फिर ही स्वीकार करना है। और हाँ, टीवी, ये बहुत बड़ा क्या है? माया है। और एक्सरसाइज, श्रम करना है, परिश्रम करना है। और माइंडफुल वॉकिंग, चल रहा हूं तो केवल चल रहा, होश में जीना, सजगता से जीना। और कमल पर, वो इस साधना में तो मैं नहीं बताया, परंतु वो भी एक साधना है, कर सकते हैं। और संग, जितना हो सके एकांत में अकेले रहने का अभ्यास करना है। दो लोग साथ में आते ही बातें चालू हो जाती है, यहां वहां की बातें, इधर उधर की बातें। लाओत्से ने लिखा है, लाओत्से नहीं, एक दूसरा चाइनीज फिलोसोफर, उसने अपना जीवन कहानी में लिखा है कि वो और उसका मित्र राउंड लगाते थे रोज, दोनों साथ में। नकी लेख तो नहीं, वहां कोई और लेख होगी। चुपचाप दोनों बिल्कुल बात नहीं करते थे। एक दिन तीसरा मित्र आया, कहा कि मैं आऊं आपके साथ, उन्होंने कहा आओ, परंतु एक बात याद रखना, बात मत करना कुछ भी। वो कहता बिल्कुल नहीं करूंगा। वो तीनों चलने लगते हैं, अचानक से सूर्योदय होता है, इतनी सूर्य, सूर्य की लालिमा। वो मित्र कहता है आह कितना सुंदर सूर्य है। बस फिर उसे याद आता है मैंने बोला क्यों, और फिर याद आता है, वो चला जाता है। ये दोनों आपस में बात करते, ये बातें बहुत करता है, इसको अगली बार से नहीं लेंगे साथ में, ज्यादा बातें करता है। साइलेंट वॉक, क्या करना है? साइलेंट वॉक। आज एक नई साधना बताएंगे, सन गेजिंग, जो थोड़ी सी बताई थी पर आज विस्तार से। ये क्या है सन गेजिंग? एक होता है सन बाथ, एक है सन गेजिंग। एक व्यक्ति ने बहुत काम किया इसके ऊपर, दो व्यक्तियों ने बहुत ज्यादा काम किया, HRM एंड उमाशंकर योगी, सन योगी। उमाशंकर पांडिचेरी आश्रम में था, सेवा थी, युवक था, टाइपराइटिंग का काम था या प्रिंटिंग का काम था कुछ, टाइम बहुत रहता था, समुद्र किनारे पर बैठा रहता था, देखते रहता था सूरज को, बैठे 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 बैठे, फिर सूरज उगना चालू होता उसके पहले से ही बैठ जाता था, देखते जाता था, देखते जाता था, सूर्य ऊपर तक आ जाता था और फिर छोड़ देता था। धीरे धीरे देखा उसकी भूख कम हो रही है, उसे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। तीन बार के भोजन में रात का उसने बंद कर दिया, क्योंकि भूख ही नहीं लगती थी, और ये उसका काम चालू था सूरज को देखना बस। फिर धीरे 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 उसने नाश्ता बंद कर दिया, उसे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा। लोग आश्चर्यचकित उसको मना रहे, अरे तुम ये क्या करते हो, क्योंकि हितैषी तो इर्द गिर्द रहते ही है ना सब जगह, और भोजन के विषय में तो महाहितैषी होते हैं। स्वजन अगर देखे ऐसा कुछ कर रहा है, उसकी छाती पर बैठकर उसे खिलाया जाता है, नहीं खाए तो पंप। और फिर धीरे धीरे उसकी समझ में कुछ आने लगा कि कुछ हो रहा है, सूरज की किरणों से कुछ शक्ति मिल रही है, प्राण मिल रही है, प्राण ऊर्जा आ रही है। और हमारे शरीर को क्या चाहिए? प्राण ऊर्जा चाहिए। जो कुछ हम खा रहे हैं क्या बन रहा है आखिर में? ग्लूकोज। अगर वो डायरेक्ट अगर मिल जाए तो ये सब हट जाएगा, सब्स्टिट्यूट मिल गया जैसे उसे कोई। तो सन गेजिंग एक बहुत बड़ी क्रिया है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है। ऐसा कहा गया है कि टेल मी द नेम ऑफ द डिसीज, मुझे बताओ तुम्हें कौन सी बीमारी है, और उसका एक ही इलाज है सूर्य की किरणें। इतनी प्रचंड शक्ति है सूर्य की किरणों में कि इस संसार की कोई बीमारी नहीं जो ठीक नहीं हो सकती। परंतु ये एक साधना है, कैसे करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप, पहले एक जगह निश्चित करो। पहले तो आप जहां रहते हो वहां सूर्योदय कितने बजे होता है वो टाइम ढूंढ के निकालो। जैसे आजकल माउंट में जो होता है वो 7 बजे होता है। एक है सूर्यास्त का समय, ये 2 समय किया जा सकता है, सूर्योदय और सूर्यास्त। ब्राह्मणों के लिए सुबह का समय मुरली का समय है, और अभी सूर्योदय जो होता है 7 बजे के आसपास होता है। कुछ समय पहले पूरा लॉकडाउन में वो एक अलग समय था जब बहुत जल्दी हो जाता था, 6 बजे सूर्योदय होता था बराबर 6:30 बजे तक। तो सबसे पहले तो टाइम कितने बजे सूर्योदय होता है और सूर्यास्त कितने बजे। यदि सूर्योदय 6 बजे होता है तो कितने देर तक ये किया जा सकता है। मैक्सिमम टाइम है 44 मिनट्स, पर हमको चालू करना है 10 सेकेंड से ऐसा कहा जाता है। पर धीरे धीरे बढ़ाते जाना है उसको। और कहाँ बैठकर करना है, कहाँ जितना हो सके खड़े रहकर करना है, जितना हो सके एक ही स्थान पर खड़े होकर करना है, जितना हो सके नंगे पाँव हो, और जमीन पर, पहाड़ पर, स्टाइल पर, फ्लोर पर नहीं करना जितना हो सके। परंतु परिस्थिति ऐसी नहीं तो कहीं पर भी कर सकते। फिर हर जगह पर हर समय ऐसा स्थान नहीं मिलेगा कि जहां पर मिट्टी मिल जाए, सूखी मिट्टी, और जितना अधिक तत्वों का स्पर्श हो। हमने कई बार घंटों घंटों नकी पैर पानी में, एक जल तत्व स्पर्श हो रहा है और सूर्य की किरणें इधर, ये अलग 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 ढेर सारे। माउंट में ऐसा कोई भी स्थान नहीं होगा जहां ये नहीं किया, थोड़े से पैर नकी में पाओ। तो चालू करना है 10 सेकेंड से, और त्राटक नहीं करना है, ऐसे अपलक नहीं देखना है, आराम से बैठ के देखते रहना है सूरज को। कौन से सूरज को, उगते हुए सूरज को। चालू कब करना है, जब अभी उगा ही नहीं है तब से, और वो उग रहा है उग रहा है उग रहा है, और धीरे धीरे उसको लेके जाना है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। यहां तक छोड़ दो, इससे आगे नहीं जाओ। आधा घंटा, और चश्मा निकाल कर आधा घंटा तक उस सूरज को रोज देखते जाना है। कई बार बादल होंगे तो भी चलेगा, कई बार बारिश होगी तो कांच के अंदर से भी किया जा सकता है, पर करना जरूर है। इससे बहुत सारी चीजें होगी, केवल ब्रह्मचर्य में नहीं, कुछ और शरीर में ही परिवर्तन होने चालू हो जाएगा, कुछ नई ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि आप डायरेक्ट ऊर्जा ले रहे हो। साइंस ने तो ये ढूंढ के निकाला है कि उसमें विटामिन डी है, पर साइंस को अभी ये नहीं पता उसमें और भी क्या क्या है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। जैसे जो मसाले आप दुकान से खरीद के लाते हो एवरेस्ट, क्या कोई गारंटी देके कह सकता है कि इसमें अदरक प्याज लहसुन नहीं है? देखा क्या बनाते हुए, उसमें लिखा तो है कि नहीं है, पर उसकी कोई गारंटी? खा तो रहे ना, लगता है, पर मां उसमें लिखा नहीं है, खुद ही बनाओ अपने। तो ये भी विज्ञान ने सब कुछ नहीं, ये हम सब कुछ नहीं जान सकते। उसी तरह दूसरे रीति से सूर्य की किरणों को देखते रहना है। ये ब्राह्मणों का सुबह का समय मुरली का है, इसलिए अनदर टाइम है इवनिंग का, सनसेट का। ये टाइम सबके लिए खाली है, या नहीं है तो निकालो। और कई लोग तो ऐसी जगह रहते हैं जहां सूर्योदय और सूर्यास्त से कोई लेना देना ही नहीं है, दिन रात सेवा के अंदर घुसे रहते हैं, ऑफिस के अंदर अपने डिपार्टमेंट में धसे रहते हैं। पर थोड़ा बाहर निकालना है सूर्यास्त से आधा घंटा पहले। जैसे सूर्यास्त अगर होता है 6:30 बजे टाइम, तो 6 बजे चालू करो। यहां जैसे अनादरा, अनादरा में कितने सारे सेशंस हम लोगों ने बैठे हैं सामने, रविनेश जी, तो ढेर सारे सेशंस किए। तो नंगे पाओ चप्पल बाजू रख देना जमीन पर पाओ, ज्यादा खड़े नहीं सकते तो बैठ जाओ, और सूर्य को देखते रहना है। अब क्या करना है आगे, यहां पर योग के प्रयोग करने हैं। सारा ज्ञान योग इसमें उड़ेल दो, जोड़ दो इसके साथ। क्या क्या? पहला, सूर्य की किरणों की शक्ति मुझे मुझ आत्मा में आ रही है। एक, ये ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में फैल रही है, पहला प्रयोग। दूसरा, यहां पर पीनियल ग्लैंड है आत्मा का स्थान, वो स्टिमुलेट, उसके पीछे पिट्यूटरी, उसके पीछे हाइपोथैलेमस, ये एक्सिस है, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस पीनियल एक्सिस, ये पूरा स्टिमुलेट हो रहा है, नए हार्मोन्स क्रिएट हो रहे हैं। और तीसरा प्रयोग, वो सूर्य की किरणें आ रही है, घुटनों में दर्द है, पेट में दर्द है, वो किरणें सीधा वहां जा रही है और उस बीमारी को ठीक कर रही है। मेरी सारा शरीर शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है, मेरी सारी बीमारियां दूर हो रही है। चौथा प्रयोग, सूर्य की किरणें आ रही है और मेरे सारे चक्र सक्रिय हो रहे हैं, सातों चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं, कुंडलिनी का जागरण हो रहा है। पांचवा, छठवा प्रयोग, सूर्य की किरणें आ रही है और मेरा ऑरा बढ़ रहा है। अगला प्रयोग, जैसे वो सूर्य अविनाशी है, मैं आत्मा भी अविनाशी हूं। जैसे वो सूर्य सृष्टि का साक्षी है, मैं भी साक्षी हूं। जैसे वो सूर्य रोज उगता है, मैं इस संसार का ज्ञान सूर्य हूं, मैं प्रकट हुआ हूं संसार के अंधकार का विनाश करने। वो सूर्य आशा की किरण लाता है, मैं भी आशा की किरण हूं। वो सूर्य शक्तिशाली है, मैं भी शक्तिशाली हूं। वो शिव बाबा है, मैं आत्मा हूं, उसकी किरणें मुझ में आ रही है। कभी वो ही मैं हूं, कभी वो परमात्मा है, मैं आत्मा, ये अनुभव। वो तटस्थ है, मैं भी तटस्थ हूं। वो दाता है, मैं भी दाता हूं। सूर्य से खेलना है, सूर्य को दोस्त बनाना है अपना, मेक सन योर फ्रेंड। उमाशंकर योगी कहता है, ये इसलिए नहीं करो कि ये फायदे होंगे, ऐसा करो कि सूर्य से दोस्ती हो जाए बस। वो भी कर सकते हैं। सूर्य को देखते रहना है, और सूर्य को देखते देखते कभी कभी तो लगता है, आहा क्या नाश्ता हुआ गया आज, पूरा जैसे पेट ही भर गया। और कितना दिन करना है, कितने सेशंस होने चाहिए, धीरे 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 3 महीना में देखेंगे बीमारियां खत्म हो रही है। 6 महीने में पता चलेगा क्रेविंग जो है वो नहीं हो रही है, अब तलब रहती थी ना, ये खाऊं वो खाऊं, ये करूं वो करूं, ये नहीं हो रही है। और 9 मास के बाद भूख खत्म, नो हंगर, फिर व्यक्ति सीधा प्राण ऊर्जा पर जीता है, केवल प्राण ऊर्जा। परंतु इसके रेगुलर सेशंस होने चाहिए, रेगुलर सेशंस होने चाहिए। इसका ब्रह्मचर्य पर प्रयोग किया जा सकता है। सूर्य की किरणें आ रही है, मेरे अंदर के काम विकार के सारे कीटाणु नष्ट हो रहे, काम ही क्या, सारे दूसरे विकार भी नष्ट हो रहे। इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति और इतनी खुशी, इतना आनंद का अनुभव होता है सूर्य को देखते देखते देखते। वो जो शाम का सूरज होता है, ढल रहा है, लाल 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 लाल, देखते रहो देखते रहो देखते रहो। ऊपर से अभी इतना बड़ा था, और ये भी देखना कैसा अनित्य है ये सब कुछ, अभी वहां था अभी डूब गया, सब कुछ अनित्य है संसार में। जो चमक रहे कल डूब जाएंगे, उनकी आभा नष्ट हो जाएगी। वो भी अनुभव, इतने हजारों संकल्प आते, ऐसा लगता है डायरी लेकर लिखना चालू करूं, पर डायरी लिखना भी तो बाधा है, वो वहीं तक रहते हैं और फिर खो जाते हैं। पर इतनी ऊर्जा, इतनी ऊर्जा, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति, सन गेजिंग। आप जस्ट जाओ इंटरनेट पे, टाइप करो सन गेजिंग के कितने फायदे, धड़धड़ 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 फायदे आएंगे, इतने सारे फायदे। केवल क्रेविंग जो है ना, क्रेविंग, शुगर की क्रेविंग अपने आप खत्म। नहीं तो हर बार खाना खाओ, क्या ढूंढते हैं, गुलाब जामुन, क्या ढूंढते हैं, कोई लड्डू, क्या ढूंढते हैं, तिल गुड़ का लड्डू, क्या ढूंढते हैं, कोई मिठाई, दिलकुश मिठाई रखी है कमरे में, गुड़ केक का टुकड़ा, हर बार कुछ भी खाओ तो मीठा चाहिए। ये क्रेविंग अपने आप अपने आप अपने आप अपने आप खत्म हो जाएगी। इस पर सबसे ज्यादा प्रयोग किए HRM, हीरा रतन मनिक। निर्वेर भाई साहब जब एडमिट थे, उनके बाजू के ही कमरे में थे ये, कभी स्टर्लिंग हॉस्पिटल में 411 दिन थे, इनको रखा गया 411 दिन, इन पर प्रयोग किए गए। और इनका भोजन था, सुबह शाम सनगेजिंग करते थे, और इनका भोजन था पानी, बस केवल पानी। सुबह सोनोग्राफी करते थे स्टर्लिंग के डॉक्टर, डॉक्टर सुधीर शाह, जो दादी जानकी को देखते थे, गुलजार दादी को जिन्होंने देखा, सबको अभी भी है, और यहाँ पे भी आए थे अभी कुछ समय पहले, अभी कुछ दिन पहले ही आके गए माउंट आबू में, डॉक्टर सुधीर शाह। सबसे ज्यादा काम डॉक्टर सुधीर शाह ने, इन पर प्रयोग किया, सुबह सोनोग्राफी शाम को सोनोग्राफी। ये व्यक्ति कुछ खाता ही नहीं है, कितना दिन रखा उसको फ्री में स्टर्लिंग हॉस्पिटल में, 411 दिन। पहले कुछ 10-15 दिन थोड़ा वेट लॉस हुआ, बाद में वेट स्टेबल हो गया, विदाउट एनी फूड ही सर्वाइविंग, जस्ट ऑन वाटर, जीरो कैलोरीज। ये प्रयोग इन्होंने यहाँ किया। फिर इसी व्यक्ति ने विदेश में भी ढेर सारी जगह पर प्रयोग किए, मतलब अपने आप को ऑफर किया, देखो मैं यूं हूं, करना है तो करो, देखो। फिर उनको वहां पर भी रखा, कहीं 300 दिन रखा उसको, 360 एक साल तक रखा और प्रयोग किए, देखे क्या होता है इनके शरीर में, क्या हो रहा है, क्योंकि ये चैलेंज है, ये तो आदमी तो खतरनाक है, ये तो चैलेंज कर रहा है पूरा हमारे। हम कहते हैं फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ये कहता है फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, भोजन ऊर्जा, ऊर्जा भोजन से मिलती नहीं, ये तो कोई और कहेगा। सेम चीज सबसे पहले कही थी वाइले ब्रुक्स ने, वाइले ब्रुक का इंटरव्यू देखो, वो कहता है ईटिंग ए हैबिट है तुम्हारी, किक दिस हैबिट आउट, ये तुम्हारी आदत है, एक्वायर्ड हैबिट है। वाइले ब्रुक का इंटरव्यू, ब्रदारियन, इज अ ब्रदारियन, ब्रदारियन वो लोग हैं जो प्राण ऊर्जा पर जीते हैं। इनकी कॉन्फ्रेंसेस होती है अभी अभी, हर साल एक बड़ी कॉन्फ्रेंस, लॉकडाउन की वजह से इस साल नहीं हुई, नहीं तो हर साल सारे ब्रदारियंस मिलते हैं। ब्रदारियन अर्थात जैसे फ्रूटेरियन होता है, स्प्राउटेरियन होता है, वेजिटेरियन होता है, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वैसे ब्रदारियन, ब्रदारियन अर्थात ये वो लोग हैं नो फूड नो वाटर, इनको ना भोजन की आवश्यकता ना पानी की आवश्यकता है। और कैसे जीते हैं फिर, ये असंभव है, लोगों को तो सुन के ही शौक लगेगा, ये संभव है क्या, मर जाएंगे हम तो, हम तो 6 घंटा में भी तिलमिला उठते हैं भूख से, पर ये लोग 40 साल 20 साल 50 की सहज। इसके 4 लेवल है, 1 2 3 4, लेवल 1 लेवल 2, लेवल 1 अर्थात ये अवेयरनेस की ऐसा भी जीवन हो सकता है, लेवल 2 थोड़ा सा प्रयोग किया, लेवल 3 में व्यक्ति फ्रूट्स वगैरह में कभी लेता है कभी नहीं लेता है, और लेवल 4 अर्थात एकदम हाइएस्ट, विक्टर ट्रिवैगियो अभी है, एलिटॉम अभी है, जजमहीन ऑस्ट्रेलिया अभी है, एलर रे मेयर 1 ईयर विदाउट फूड एक किताब है। ये इन्होंने साइंटिफिक प्रयोग किए हैं सारे, भोजन पर प्रयोग किए, दिन रात बैठकर प्रयोग किए, इसकी बहुत सारे वर्कशॉप्स है, कोई कहता है 3 डेज का वर्कशॉप है, किसी का 5 डेज का है, किसी का 11 डेज का है, किसी का 15 डेज का है, किसी का 21 डेज का है, जजमहीन का, अलग अलग वर्कशॉप है। इन्होंने खाली इस पर काम किया और इसमें देखा कि क्या हो रहा है शरीर में, और इसमें भोजन की कहीं चर्चा ही नहीं है, इसमें चर्चा है ऊर्जा की, चर्चा किसकी है, ऊर्जा की, क्योंकि शरीर को ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा अगर उसे दे दिया जाए तो अपने आप सब कुछ होने लगता है। ये जो सारे टॉक्सिन्स हम डाल रहे, सीधा अगर ऊर्जा डाला तो टॉक्सिन्स डालने की आवश्यकता ही नहीं, और शक्ति उतनी ही रहेगी, पूरी बॉडी बिल्डर रहेगा व्यक्ति, पूरा सुबह से लेकर शाम तक काम करेगा, नींद बहुत नाम मात्र, 1 घंटा 2 घंटा कर लिया काफी है, आवश्यकता ही नहीं है। और ये सारी झंझट, खरीदो भोजन लाओ फिर पकाओ फिर उसका यूटेंसिल्स फिर खाना ये वो और फिर उसको फेंको उसकी प्रोसेस फिर लैक्सेटिव्स और कब्स और पेट साफ नहीं होता वो सारा कुछ, ये सब एक तरफ, सीधा यू एंटर इन टू द ब्रदारियन लाइफ स्टाइल। ये एक जीवन शैली है, इसका भोजन से कोई संबंध, इसका संबंध है ऊर्जा से। तो सन गेजिंग एक मेथड है, जो सन गेजिंग रेगुलर करने लगेगा, करना चालू करो, धीरे 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 पता चलेगा कुछ कुछ हो रहा है शरीर में, शक्ति बढ़ रही है, ऊर्जा बढ़ रही है, आलस खत्म हो रहा है, एकदम नया, जहां दर्द होने लगता था कैल्शियम लेते रहो, ये लेते रहो, वो खाते रहो, ये इंजेक्शन वो इंजेक्शन, डॉक्टर साहब ताकत का इंजेक्शन दे दो, ताकत कम लग रही है, अरे जवान आदमी हो ताकत कम लगती है, ये सब आते हैं जवान कहते ताकत नहीं है, क्या ताकत नहीं है, रिपोर्ट सब नॉर्मल, पर ताकत ही नहीं है, ताकत आएगी ऊर्जा प्रकृति से, प्रकृति के सानिध्य में जाओ, ये पहली मेथड है। तो सन गेजिंग 3 मंथ्स 6 मंथ्स 9 मंथ्स, शाम का समय सबसे बेस्ट है ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि सुबह का मुरली का समय है तो शाम का समय बेस्ट है। तो नंगे पाओ एक ही स्थान पर और देखते रहना, चालू करेंगे 10 सेकेंड, पर हमने जब चालू किया था सीधा 15 मिनट से चालू किया, वो 10 सेकंड तो बहुत ही कम हो गया, किताबों में लिखा है 10 सेकंड से चालू करो, हमने कहा हटाओ सीधा 10 मिनट, कुछ नहीं हुआ, आंखों से कुछ नहीं, आंसू बिसू कुछ नहीं आए, ठीक रहा, उसको बढ़ाते बढ़ाते 40 मिनट तक लेके गए। और कई बार कोई भी, और दूसरा कोई म्यूजिक लगा के नहीं रखना कान में, प्रकृति की जो नैसर्गिक आवाजें हैं वो सुनते सुनते, सुबह के समय ये फायदा है कि सुन रहे, बस देख रहे सूरज को, प्रकृति की आवाजें सुनते सुनते, और बहुत सारी क्लासेस टचिंग्स टॉपिक सब वहीं से निकला है, सूरज से ही निकला है, सूरज ने ही कितनी सारी चीजें सिखा दी। तो सबसे पहला सन गेजिंग, और इसके साथ एक दूसरा जोड़ना है, 9-6 मास के बाद फिर करने की आवश्यकता नहीं ऐसा कहा गया, उसके बाद में फिर एक ही मेथड रह जाती है, और वो कौन सी है, बेयर फुट वॉकिंग अर्थात नंगे पाओ जमीन पर चलना, जमीन पर, घास पर नहीं, घास पर एनर्जी चली जाती है, पत्थर पर भी नहीं, पहाड़ पर भी नहीं, घास पर भी नहीं, नंगे पाओ मिट्टी में, उसमें जमीन हो, पहला मिट्टी हो, थोड़ी सी गीली हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो भी ठीक है, सूर्य की किरणें ऊपर से हम पर गिरती रहे और वॉक करते हैं। कितना मिनट? 45 मिनट्स बेयरफुट वॉकिंग। जो लोग डायबिटिक है वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखे, पहले देख ले वो जो ज़मीन है वहाँ पर कंकड़ पत्थर कांच के टुकड़े कुछ ना हो। एक जगह फिक्स कर लो अपने घर में, अगर कर सकते सेंटर पर रखकर कर सकते तो एक ट्रैक क्रिएट करना है बड़ा सा, जिसमें 45 मिनट्स एटलीस्ट बेयरफुट वॉकिंग हो। और वो कुछ भी कर सकते हो, उसमें आप मुरली चिंतन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, एकांत का अनुभव हो सकता है उसमें। और उसमें भी क्या सोचना है, फिर अभी है संकल्प की बात, धरती से ऊर्जा मुझ में आ रही है। इसमें सन गेजिंग में और एक संकल्प किया जा सकता है कि सूरज से किरणें मुझ में आ रही है, ठीक है, परंतु सुबह अमृत वेला हमने क्या किया, पांचों तत्वों को प्योरिटी की सकाश दी और सन गेजिंग करते करते उससे ली आदान प्रदान। सुबह शाम हम क्या कर रहे हैं, अमृत वेला योग और नुमा शाम के योग में तत्वों को सकाश दे रहे, पर जब सन गेजिंग कर रहे हैं और बेयरफुट वॉकिंग कर रहे हैं तब क्या कर रहे हैं, धरती की सारी उपचारक शक्ति मेरे शरीर में आ रही है। इससे क्या क्या होगा, रिफ्लेक्सोलॉजी होगी, सारा ऑक्यूपंक्चर हो जाएगा, गेट जो है ना चलने की चाल सुधर जाएगी, क्योंकि हमको आदत किसकी है, चप्पल की, जूतों की, कभी भी हमने आज तक चप्पल ही पहन के चले हैं सब जगह पर, बचपन से हमको सिखाया है वैसे गया है। जब लोग पुराने जमाने 200 साल 100 साल पहले कैसे थे, ज्यादा स्वस्थ थे, क्यों, नंगे पाँव चलते थे, अभी तो नंगे पाँव जमीन का हमें अनुभव ही नहीं है, जूता है हर चीज में, हर समय जूता है। तो यहां डायरेक्ट प्रकृति से टच है, पैर का टच कहाँ हो रहा है, सीधा जमीन से टच हो रहा है। पूरा लॉकडाउन जो था, लॉकडाउन पूरा वो जो हमारे हॉस्पिटल के सामने शैतान सिंह पार्क है, पूरा वो बेयरफुट वॉकिंग वहीं पे गया, शैतान सिंह पार्क, अभी उसका नाम बदली करना नहीं, पर वो बड़े बहादुर योद्धा थे हाँ उनकी। तो ये दो चीजें जुड़ी हुई है, तो इसमें हम क्या संकल्प करेंगे, धरती की सारी ऊर्जा मुझ में आ रही है और मेरी पवित्रता की शक्ति वो उसमें जा रही है धरती में, और एंजॉय करना है इसमें। और ये अच्छा कहाँ होता है, जैसे वॉलीबॉल का कोई ग्राउंड हो, क्रिकेट का ग्राउंड का, जो खेती, खेती में तो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है बेयरफुट वॉकिंग। और इन दोनों का संबंध ब्रह्मचर्य से, दोनों का संबंध ब्रह्मचर्य से। तो बेयरफुट वॉकिंग, सन गेजिंग, ये दो आज के विशेष अभ्यास है। सन गेजिंग की विस्तार से चर्चा की है, जो और जानना चाहते हैं, अच्छे से जानना चाहते हैं, उमाशंकर योगी को पढ़ सकते हैं या एचआरएम को पढ़ सकते हैं, हीरा रतन मनिक, और अपने ड्यूटी के अनुसार, अपनी सेवा के अनुसार टाइम सेट करना है, जगह ढूंढना है, कहाँ किया जा सकता है, टेरेस पे करो, कहीं पर भी ढूंढो कहाँ किया जा सकता है। बट वन थिंग इज श्योर, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा सन गेजिंग से, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स है, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स है, फिजिकल बेनिफिट्स है, साइकोलॉजिकल, सब सब सब, और बुद्धि तीव्र होगी, शार्प होगी, और एक चीज इसमें होगी, स्थिर एक जगह शरीर को रखने का अभ्यास, ये भी इसमें अभ्यास है, हम शरीर को हिला नहीं रहे इसमें, सूरज को देख रहे बस, और अच्छे अच्छे संकल्प कर रहे, या अच्छे अच्छे संकल्प आ रहे हैं, जो सोचे नहीं वो संकल्प आ रहे, ऐसे ऐसे नए नए संकल्प कि जो बुद्धि एकदम आह्लाद में बहने चालू कर दिए। और फिर धीरे धीरे और एक अभ्यास, केवल आंखों से ऊर्जा नहीं आ रही है, पूरे शरीर के अंग अंग से सूर्य की किरणें जो पड़ रही है ऊर्जा मुझ में जा रही है। उसके बाद और एक प्रयोग, केवल नाक से श्वास नहीं ले रहा हूं, ये बंद, ये जो है ना शरीर के एक एक अंग से हवा अंदर, श्वास अंदर जा रहा है ये अभ्यास। तो सन गेजिंग एंड बेयर फुट वॉकिंग, आज की ब्रह्मचर्य की साधना के ये दो अभ्यास। ओम शांति।